समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना बुलाना, भैया मेरे।
भैया कृष्ण भेजती हूँ मैं राखी अपनी ये लो आज, कई बार जिसको भेजा है सजा सजा कर नूतन साज, लो आओ भुज दंड उठाओ इस राखी में बंध जाओ, भरत भूमि की रज भूमि को एक बार फिर दिखलाओ। आज भाई बहन के प्रेम के बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी समृद्धि स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करती हैं, और भाई अपनी बहन को उनकी रक्षा का वचन देते हैं और साथ ही प्रेम स्वरूप उन्हें उपहार भी भेंट करते हैं। श्रोताओं, ये त्यौहार प्रेम सौहार्द और भाई बहन के संबंधों का प्रतीक है, और हमारा एक धर्म हमारे देश की सरहदों की हिफाजत करने वाले सशस्त्र बलों के उन जवानों के प्रति भी है जो दिन रात की परवाह किए बगैर हमसे हमारी रक्षा के लिए किया हुआ वचन निभाते हैं। तो आज हम सब की ओर से एक आभासी राखी उनके कलाई पर भी, जो हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हैं। इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं।
Well, yes, listeners, today it's Raksha Bandhan. The festival of Raksha Bandhan, well, it symbolizes the deep bond of love and protection between brothers and sisters, as even Mukesh was telling us. Well, on this particular joyful occasion, sisters, as they tie vibrant rakhis on their brothers' wrist, and brothers, they should, I think, showcase their love by offering meaningful gifts. They can be such meaningful gifts as, like, I mean, other than chocolate boxes, even some other gifts which the sisters demand, right? So yes, the day, it is very significant as brothers, they vow to protect their sisters, and this in turn helps solidify the sibling bond, right?
जी श्रोताओं, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की इस खूबसूरत सुबह में मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार बल, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश। वेल अगेन गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, एंड लिसनर्स, टुडे वी विल इन आवर प्रोग्राम आज सवेरे विल फर्स्ट गिव यू द लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोग्राम विच इज कमिंग अप, एंड ऑल्सो we'll be providing you listeners metro city updates, and we will be exploring today's history. Today it's 9th of August, and first we will begin with the headlines.
ji to nazar dalte hain ab tak ke mukhya samacharon par। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई विकास परियोजनाओं और राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना की सब्सिडी जारी रखने, तेल कंपनियों को क्षतिपूर्ति और असम तथा त्रिपुरा के लिए विशेष विकास पैकेज सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से वर्ष 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी जारी रखने को भी स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार रसोई गैस सिलेंडर पर 300 रुपए तक की सब्सिडी देगी।
12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। इस फैसले से करीब 10 करोड़ 33 लाख घरों में लाभ मिलेगा, इससे पीएम उज्ज्वला को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने तमिलनाडु में 4 लाइन के मरक्कम पुद्दुचेरी राजमार्ग के निर्माण को भी स्वीकृति दी।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज मन की बात प्रोग्राम ऑन आकाशवाणी हैज जनरेटेड ओवर 34 करोड़ रुपीज रेवेन्यू सिंस इट्स इंसेप्शन। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉ एल मुरुगन सेड दिस इन अ रिटन रिप्लाई इन राज्यसभा यस्टरडे। He said that through these monthly radio episodes, the Prime Minister shares inspiring stories of Indians doing impactful work in areas such as education, also health, environment, innovation and social service. Mr. Murugan said a large segment of the audience engages by listening to the program on Akashwani, which broadcasts it. live across its national and regional network. Simultaneously, the program is telecast on various Doordarshan national and regional language channels. He said there is significant expansion in audience engagement for Mann Ki Baat on digital platforms including YouTube and also OTT. Mr. Murugan also said Prime Minister Narendra Modi's Mann Ki Baat continued to lead as a national platform, showcasing grassroots achievers and also inspiring citizen participation in nation building.
सरकार ने कहा है कि देश में टमाटर की खुदरा कीमतें स्थानीय कारणों से बढ़ रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि टमाटर को लेकर ना तो मांग आपूर्ति में कोई असंतुलन है और ना ही इसके उत्पादन में कोई कमी आई है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में देश के उत्तर पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण दिल्ली में टमाटर की कीमतें 85 रुपए किलो तक पहुंच गई थीं, लेकिन आजादपुर मंडी में टमाटर की लगातार उपलब्धता के कारण अब इसकी खुदरा कीमतों में कमी आ रही है।
The government e-marketplace GeM has achieved a remarkable milestone by recording a gross merchandise value GMV of 5.4 lakh crore rupees in the financial year 2024-25. Speaking at the 9th Foundation Day celebration of GeM yesterday, GeM CEO Mihir Kumar emphasized that the occasion is not merely a celebration of numbers but of people, those who make governance more accessible, inclusive and impactful. Mr. Kumar reiterated GeM's unwavering commitment to transforming public procurement in a more equitable and accessible process.
GeM's journey of 9 years has been a phenomenal journey of GMV growth of more than 13.5 lakh crore. I am happy to share that out of the GMV which we have achieved, close to 37% has been contributed by micro and small enterprises. We celebrate the success of micro and small enterprises, women entrepreneurs, SCST entrepreneurs, startups, and all the underserved sellers on the portal. I express my sincere gratitude to all the stakeholders. On 9th Foundation Day, we reaffirm our commitment to create Viksit Bharat 2047.
रेलवे ने 4.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी रुद्राष्ट्र का सफल परीक्षण कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार ये एशिया की सबसे बड़ी मालगाड़ी है। परीक्षण के दौरान इस मालगाड़ी ने उत्तर प्रदेश में चंदौली के गज ख्वाजा रेलवे स्टेशन से झारखंड के गढ़वा के बीच 209 किलोमीटर की दूरी 40.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटे 10 मिनट में तय की। इस रेलगाड़ी में 7 इंजन और 345 वैगन थे।
Well, now we are also giving you an international update here, and then Mukesh will also do that. U.S. President, Vice President, I beg your pardon, J.D. Vance has said that Washington has no plans to recognize a Palestinian state, highlighting a key difference with Britain as two allies discuss the crisis in Gaza. Speaking in Kent, England, Vance questioned the practicality of recognition given the lack of a functional government there. The vice president said the U.S. administration wanted to see Hamas eradicated so that Israeli civilians would not attack again, but also to solve the humanitarian crisis in Gaza.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात करेंगे। श्री ट्रंप ने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह जानकारी दी। ट्रंप की घोषणा व्हाइट हाउस में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच शांति समझौते की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद आई है, जिसके विषय में श्री ट्रंप ने कहा कि वे वैश्विक संघर्षों के शीघ्र समाधान के पक्ष में हैं।
Now also, listeners, we'll give you the sports updates. In under-19 Asian Boxing Championships, 10 Indian boxers, including 7 women, will be vying for gold in Bangkok after registering convincing victories in their respective semi-final bouts. Women boxers Nisha, Muskan, Vinny Aarti Kumari, Prachi Tokas, along with Mausam Suhag, Rahul Kundu and Hemant Sagwan in the men's event, they have reached the final. Kritika has a direct entry in the final.
तो श्रोताओं, अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। सबसे पहले हाल दिल्ली का। दिल्ली विधानसभा ने स्कूल फीस विनियमन विधेयक पारित कर दिया है। इसका उद्देश्य दिल्ली के गैर सरकारी स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस वृद्धि पर रोक लगाना है। इस विधेयक के पारित होने के बाद अब दिल्ली के निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी के लिए बच्चों के माता पिता की सहमति लेना आवश्यक होगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने विधानसभा में कहा कि अगर एक भी अभिभावक फीस वृद्धि के प्रस्ताव से असहमत हो तो उसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने दिल्ली में सरकारी स्कूलों के स्तर को बेहतर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
हम चाहते हैं आने वाले समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर इतना बढ़ा दे कि लोग प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए क्यों जाना है यहाँ। सरकारी स्कूल में ही जब स्मार्ट क्लासरूम है, आईसीटी लैब है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जब ये सब सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, ये खड़ा करने का हमारा लक्ष्य है। मगर जब तक ये खड़ा हम नहीं कर पाते हैं तब तक दिल्ली के एजुकेशनल लैंडस्केप पर 18 लाख बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में पिछली सरकार की नाकामियों के कारण पढ़ते हैं। उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता।
दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025 के अनुसार मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर जुर्माना लगाया जा सकता है और उनसे भविष्य में फीस बढ़ाने का प्रस्ताव देने का अधिकार छीना जा सकता है। विधेयक में शुल्क नियमन प्रक्रिया की निगरानी के लिए 3 समितियों का गठन का भी प्रावधान है। इनमें से 1 स्कूल स्तर पर, 1 जिला स्तर पर और 1 उच्च स्तरीय पुनरीक्षण समिति होगी। इसके अलावा श्रोताओं, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा है कि दर्शकों और श्रोताओं के लिए प्रवेश की बाधाओं को न्यूनतम करने और सूचना, शिक्षा तथा मनोरंजन तक हर संभव व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कल नई दिल्ली में वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मैगजीन स्टोर का शुभारंभ किया। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस सेवा का उपयोग करके प्रतिमाह 99 रुपये या प्रतिवर्ष 999 रुपये का भुगतान करना होगा। उन्होंने कहा कि सदस्यता शुल्क से 8 भाषाओं में 50 से अधिक टाइटल देखे जा सकेंगे। और दिल्ली में कल से 3 दिन का सेलिब्रेटिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ। महोत्सव में देश भर के फिल्म निर्माता, कलाकार और फिल्म जगत से जुड़ी हस्तियां भाग ले रही हैं। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिल्म, फीचर फिल्म और विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रस्तुतियों के माध्यम से सिनेमा की सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति को प्रस्तुत किया जा रहा है। इस अवसर पर दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, केंद्रीय सचिव डॉक्टर अंजू राठी, प्रमुख फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर और कलाकार मनोज जोशी सहित फिल्म जगत के प्रमुख कलाकार उपस्थित रहे। अब श्रोताओं, हाल मुंबई की खबरों का। मुंबई आवास और क्षेत्र विकास बोर्ड मंगलवार दोपहर 12 बजे से शहर की विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में 149 गैर आवासीय परिसरों की ई नीलामी के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन शुरू करेगा। पात्र आवेदकों के लिए ई नीलामी 28 अगस्त को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच www.eauction.mhada.gov.in पर आयोजित की जाएगी और परिणाम 29 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। पंजीकरण दस्तावेज अपलोड और बयाना राशि का भुगतान 25 अगस्त तक ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। आवेदकों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उनके पास 2018 के बाद महाराष्ट्र में जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है और साथ ही उन्हें निर्धारित जमा राशि का भी भुगतान करना होगा। विस्तृत नियम, संपत्ति सूची और पात्रता मानदंड महाडा की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री शंभू राज देसाई ने घोषणा की है कि सुरक्षा बढ़ाने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दक्षिणी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया और नरीमन पॉइंट पर जल्द ही एक समर्पित पर्यटन सुरक्षा बल तैनात किया जाएगा। बृहस्पतिवार को मुंबई में एक समीक्षा बैठक के दौरान श्री देसाई ने कहा कि ये कदम पिछले 3 महीनों में महाबलेश्वर और पंचगनी में इस तरह के बल की सफल तैनाती के बाद उठाया गया है। और अब चलते हैं देश की सांस्कृतिक राजधानी कोलकाता की ओर। तो कोलकाता के सियालदह स्टेशन से जल्द ही एक नई वातानुकूलित EMU लोकल ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। सियालदह रानाघाट EMU लोकल ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित होगी और इसका किराया पारंपरिक गैर AC उपनगरीय ट्रेनों की तुलना में अधिक होगा। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे होंगे, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए भी इसमें सीटें आरक्षित की गई हैं। और श्रोताओं, अब चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के समाचार शगुन से।
यस, एंड आई विल बिगिन विद चेन्नई। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड चेन्नई इन कोऑर्डिनेशन विद द मिनिस्ट्रीज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस एंड EEPC चेन्नई हेल्ड एन आउटरीच प्रोग्राम ऑन SCU मेट and export control compliance to raise awareness among exporters about dual-use items with civilian and military applications, including those linked to weapons of mass destruction. Officials from various ministries, customs, defense production and diplomacy, they participated, engaging in exporters through interactive sessions. Now we are heading to Bengaluru. Union Minister of State for Railways V. Somanna inspected the Krantivira Sangoli Rayanna Railway Station in Bengaluru. This happened yesterday before Prime Minister Narendra Modi arrived on Sunday to flag off the Bengaluru-Belgavi Vande Bharat Express. The minister was briefed about the multi-layered security protocol during the Prime Minister's visit. The bomb detection dog squads, Railway Protection Special Force personnel and Railway Protection Force, they will be providing the security during the visit of the Prime Minister. During the visit on Sunday, access control has been tightened at all the entry and exit points to ensure the highest level of security. Union Railway Minister Ashwini Vaishnav is arriving to review the arrangements. This will happen tomorrow evening. Now let's head to Hyderabad, and as we were talking about Rakhi in the beginning as well, this particular story, it is about Rakhi for soldiers. Mm-hmm. In Telangana, students from various colleges in the twin cities of Hyderabad and Secunderabad, they tied Rakhis in the presence of Governor Jishnu Dev Varma to officers of the Army, Navy and also Air Force, symbolizing their gratitude. The Rakhi for Soldiers celebrations organized by the Samskruti Foundation held at Raj Bhavan in Hyderabad, they happened yesterday. Extending Raksha Bandhan greetings, the governor reflected on the festival's deeper meaning of mutual protection and responsibilities, also invoking the Mahabharata tale of Draupadi and Lord Krishna. He noted that soldiers are not only those at the borders, but also include individuals serving the nation selflessly in various fields, from scientists to sanitation workers.
श्रोताओं, अब आज सवेरे कार्यक्रम में वक्त है महानगरों के मौसम का हाल जानने का। सबसे पहले बात दिल्ली के मौसम की। इधर राजधानी दिल्ली में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे शहर का मौसम खुशनुमा हो चुका है। और जैसा कि आज रक्षाबंधन का पर्व है और सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए उनके घरों की ओर प्रस्थान कर रही हैं, ऐसे में सभी श्रोताओं से अपील है कि फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी पूर्वक वाहन चलाएं और सकुशल गंतव्य तक पहुंचे, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। बहरहाल, दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उधर मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक या दो बार गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। शहर में आज का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता में आज आंधी के साथ वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु के मौसम का हाल सुना रही हैं शगुन।
इट्स क्वाइट सिमिलर इन अदर सिटीज एज वेल मुकेश। चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन और थंडरस्टॉर्म। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 26 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 34 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस and maximum will be around 29 degrees. Hyderabad, it's much the same there, is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The temperature will hover between minimum of 21 degrees and maximum of 32 degrees Celsius.
और कार्यक्रम के अगले भाग में आप जानते हैं कि इतिहास में आज का दिन क्यों है खास, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम में बात करते हैं आज के दिन के बारे में। श्रोताओं, आज विश्व आदिवासी दिवस है। यह दिवस आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व में जनजातीय लोगों विश्व में जनजातीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के अधिकारों की रक्षा और उनकी संस्कृति को सम्मान देना है। जैसा कि शगुन, अभी हम बात करें तो मौजूदा सरकार भी आदिवासियों के संरक्षण के लिए बहुत कदम उठा रही है, तो इस मायने में भी अगर देखा जाए तो आज का ये दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है।
वेल, वेरी राइटली सेड देयर मुकेश, द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स, वेल राइट, इट इज आल्सो ऑब्जर्व्ड 9 अगस्त ईच ईयर एंड दिस इज कॉल्ड बाय दिस नेम टू रेज अवेयरनेस एंड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पॉपुलेशन। वेल, दिस इवेंट इट आल्सो रिकॉग्नाइजेस द अचीवमेंट्स एंड कंट्रीब्यूशंस दैट इंडिजिनस people they make to improve world issues such as environmental protection as well.
तो श्रोताओं, अब नजर डालते हैं आज के दिन के इतिहास पर। 1925 में आज ही के दिन बहु प्रसिद्ध काकोरी कांड की घटना हुई थी।
ऑल्सो टूडे इन दिस ऑन दिस पर्टिकुलर डे इन द ईयर 1942 आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ईयर द क्विट इंडिया मूवमेंट अ मेजर सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इट वॉज लॉन्च टूडे and it was initiated by Mahatma Gandhi with the slogan which we remember do or die Subhash Chandra Bose well Netaji Subhash Chandra Bose he formed the Indian National Army in Malaya with the help of the Japanese he inaugurated the government of free India at Singapore so this happened in the year 1942
ji shrota 1945 mein aaj hi ke din America ne Japan ke Nagasaki par dusra parmanu bomb giraya tha
In the year 1966 now, heroes of the 1942 movement, they were honored at a rally in Red Fort. In the year 1971 now, a 20-year non-aggression treaty for peace, friendship and cooperation was signed between India and USSR.
जी, रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने प्रधानमंत्री सर्जेई स्टेपशिन को बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख व्लादिमीर पुतिन को आज ही के दिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था और 2000 में जिम्बाब्वे में व्यापक विरोध के बावजूद भूमि सुधार की प्रक्रिया भी आज ही के दिन शुरू हुई थी और 2005 में नासा का मानव युक्त अंतरिक्ष यान डिस्कवरी 14 14 दिन की अपनी यात्रा के बाद आज कैलिफोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा था इसके बाद 2006 में नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच संयुक्त राष्ट्र निगरानी मुद्दे पर भी आज ही के दिन सहमति बनी थी और 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत के महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम को लेकर अंतरिक्ष यान एंडेवर अपने अभियान पर आज ही के दिन निकला था अगर हम बात करें 2008 की तो सरकारी क्षेत्र की तीन कंपनियां एनटीपीसी एनएचपीसी और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन तथा टाटा कंसल्टेंसी ने राष्ट्रीय स्तर पर पावर एक्सचेंज गठित करने तथा उसके संचालन हेतु एक संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए एक करार पर आज ही के दिन हस्ताक्षर किए थे और 2008 में आज ही के दिन भारतीय प्रतिनिधिमंडल के समर्थन से मलेशिया के सांस्कृतिक मंत्री और सांसद मोहम्मद शफी अर्दाल को राष्ट्रकुल संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया था और अगर हम बात करें सबसे अगर महत्वपूर्ण आज के दिन की कोई घटना है तो 2012 में आज ही के दिन भारतीय सेना ने परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था
जी
और अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि जयंती या जन्मदिन है सबसे पहले बात राम किंकर उपाध्याय की जी हां आज उनकी पुण्यतिथि है उन्हें भारत के मानस मर्मज्ञ कथावाचक और हिंदी के साहित्यकार की उपाधि दी जाती है उनका जन्म 1 नवंबर 1924 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था वे जन्म से ही होनहार और प्रखर बुद्धि के थे उनकी शिक्षा दीक्षा जबलपुर और काशी में हुई राम किंकर उपाध्याय स्वभाव से ही अत्यंत संकोची और शांत प्रकृति के बालक थे शुरुआत से उन पर अपने माता पिता के धार्मिक विचारों और संस्कारों का गहरा प्रभाव था उन्हें सन 1999 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया
Well, listeners, today we are also remembering another poet, literary critic and translator. I am talking about John Dryden. He has been a playwright who in the year 1668, he was appointed England's first poet laureate. He's seen as dominating the literary life of Restoration England to such a point that this particular period, it came to be known in literary circles as the Age of Dryden by his name.
श्रोताओं आज जयंती है हिंदी साहित्य में एक उपन्यासकार कहानीकार संपादक और पत्रकार के रूप में प्रसिद्ध शिव पूजन सहाय की इनके लिखे हुए प्रारंभिक लेख लक्ष्मी मनोरंजन और पाटलिपुत्र आदि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए उन्होंने वर्ष 1934 में लहेरिया सराय जाकर मासिक पत्र बालक का संपादन किया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के संचालक और बिहार हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से नामक शोध समीक्षा प्रधान त्रैमासिक पत्र के संपादक रहे देहाती दुनिया मतवाला माधुरी गंगा जागरण हिमालय हिंदी भाषा और साहित्य शिव पूजन रचनावली इनकी मुख्य रचनाएं हैं
Well, listeners, now let me talk about another writer. I am talking about Gangadhar Mehr. Well, he was given a new meaning. He has given a new meaning and glory to Odia language and the Odia literature specifically. He started composing poems from a very young age. His first writings, they follow the style and technique of the ancient Odia writers. His first Kavya, which is poetic work, was Ras Ratnakar. Well, the works which he has produced, they are marked by vivid imagination, also beauty and clarity of language in the novelty of style, in point of forceful character painting and in the lively description of nature from very different perspectives. So, I was talking about Gangadhar Mehar. Today, it's his birth anniversary.
श्रोताओं, आज जयंती है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में से एक विनायक कृष्ण गोकाक की। उनका कन्नड़ साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। कवि, उपन्यासकार, समालोचक, नाटककार और निबंध लेखक के रूप में आधी से भी अधिक शताब्दी का उनका सक्रिय कार्यकाल 1934 से आरंभ हुआ। उनका जब प्रथम कविता संकलन कालोपासक प्रकाशित हुआ, भारत, सिंधु रश्मि, समुद्र गीत, गेड़ू, जननायक और युगांतर उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें ज्ञानपीठ, पद्मश्री और साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
Well, today it's also birth anniversary of a musician, singer, actress also, and a philanthropist. I am talking about Whitney Houston. Well, she has been referred to as the voice. She is one of the most awarded performers of all time. Mm-hmm. And as a cultural icon, her chart achievements and music videos, they influenced people amongst all the genres as well of the music. And she is known for her vocal delivery and live performances. I have picked a song. This is called Miracle in her voice. Miracle.
श्रोताओं, आज जयंती है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, दूरदर्शन धारावाहिक लेखक, जनवादी विचारक, फिल्म पटकथा लेखक, उच्च कोटि के संपादक, कुशल वक्ता और स्तंभ लेखक मनोहर श्याम जोशी की। दूरदर्शन के प्रसिद्ध और लोकप्रिय धारावाहिकों में बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हंसी सपने और हम लोग से वे देश भर में खासे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने धारावाहिक और फिल्म लेखन से संबंधित पटकथा लेखन नामक पुस्तक की रचना की। दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान के भी वे संपादक रहे। कसब, कुरु, स्वाहा, कौन हूँ मैं, क्या हाल है चीन के, उस देश का यारों क्या कहना, बातों बातों में, मंदिर घाट की पौड़ियां, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, टाटा प्रोफेसर, क्याप और हमजाद उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और शरद जोशी सम्मान से अलंकृत किया गया। आइए सुनते हैं उनके द्वारा लिखित दूरदर्शन के लोकप्रिय धारावाहिक बुनियाद का ये टाइटल सॉन्ग।
Today, listeners, we are also remembering another musician. His name is John Garcia. He has been the lead guitarist and a vocalist with this particular rock band, This Is Grateful Dead. And I have the song, Friend of the Devil. Listen in.
आज जयंती है भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता और गीतकार सावन कुमार टाग की। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें साजन बिना सुहागन, सौतन, सौतन की बेटी, सनम बेवफा, बेवफा से वफा जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। उन्हें संजीव कुमार और महमूद जूनियर जैसे अभिनेताओं को ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। आइए सुनते हैं उनके द्वारा निर्देशित फिल्म सौतन से ही ये गीत।
Today, listeners, it's also birthday of Deepika Karmakar. Well, the former Indian artistic gymnast. Well, she is only amongst the five women in the world to have mastered the Produnova vault. Well, she became the first Indian gymnast to qualify for an Olympic final at the 2016 Rio Olympics. Well, she narrowly missed out the medal, but finishing fourth in that. She has been the recipient of Padma Shri. She is the recipient of that. And for her performances in Rio Olympics 2016, the government of India conferred upon her the Major Dhyan Chand Khel Ratna Award.
Ya Rab, meri duaon mein itna asar rahe, phoolon bhara sada meri behna ka ghar rahe. तो श्रोताओं, एक बार फिर रक्षाबंधन की इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज सवेरे के आज के इस अंक में बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। इसके साथ ही अनुमति दीजिए मुकेश कुमार बल और शगुन चोपड़ा को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने के।
वेल यस, रक्षाबंधन इट इज द फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस एंड द बॉन्ड, द स्पेशल बॉन्ड बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वी होप यू हैव अ वंडरफुल सेलिब्रेशन एंड वी होप दैट यू हैव अ ब्यूटिफुल वंडरफुल सेलिब्रेशन टुडे। नमस्कार।